वेलकम टू अ चैनल। वहाँ मुझे वेलकम करना नहीं आता, इसलिए सीधा कहानी पे बढ़ते हैं। अपूर्व अनुभव कहानी का नाम एक जापनीज टेल है। स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चैन के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चैन ने बुलाया था, ना ही यासुकी चैन के उसके उसने यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चैन का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली एक सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसको चढ़ने जाओ तो फिसल फिसल कर पैर रह जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो चैन अक्सर खाने की छुट्टी या स्कूल के समय के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से स्वयं सामने दूर तक ऊपर आकाश या नीचे सड़क पर अपने चलते हुए लोगों को देखा करती थी। अपने पेड़ की निजी संपत्ति बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी निशिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊँ पूछना पड़ता था। यासुकी चैन को पोलियो था, इसीलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। इसलिए वह किसी पेड़ को ना तो निजी संपत्ति मानता था और ना उस पर चढ़ पाता था। अतः तोतो चैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चैन ने माँ से कहा कि वह यासुकी चैन के घर डनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा, पर वह अपनी नज़र जूते के फीते पर ही गड़ाए रखी थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चैन से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चैन स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चैन उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चैन उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चैन को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चैन ने तोतो चैन को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ और अपने चाल को स्थिर करने के लिए दोनों और फैले हुए थे। तोतो चैन उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद तो किसी को पता भी नहीं था। वह उल्लास में ठठिया कर हंसने लगी। यासुकी चैन भी हंसने लगा। तोतो चैन यासुकी चैन को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वह वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चैन के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चैन नीचे उतर आई और यासुकी चैन को पीछे से धक्का देने लगी, पर तोतो चैन थी छोटी और नाजुक थी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चैन ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुका के खड़ा हो गया। तोतो चैन को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब करे तो करे क्या। यासुकी चैन उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चैन के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लड़का चेहरा इतना उदास था कि तोतो चैन को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है, फिर चौकीदार के चप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना जरूरी नहीं था। वह तपाई सीढ़ी को घर सीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तपाई सीढ़ी की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चैन ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरप तर तो चैन की ओर देखा, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर पैर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितने समय यासुकी चैन को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चैन के ऊपर चढ़ने पर पे में रमा था। तो चैन नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी से धरने में मदद कर रही थी, अपने सिर से वह पिछले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यासुकी चैन पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे, उस पर अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चैन को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चैन सीढ़ी थामे तो चैन की ओर चाकने लगी। तो चैन की रोलाई छूटने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसे रोने पर यासुकी चैन भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चैन को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चैन उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चैन द्वारा यासुकी चैन को पेड़ पर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चैन को तो चैन पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चैन के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चैन को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर और बालों को चेहरे से हटाते हुए तो चैन ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चैन डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चैन ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिससे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चैन ने खुश होते हुए कहा। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के बातें करने लगे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वह एक वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविजन, यासुकी चैन उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तो चैन उस समय वह तो समझ नहीं पाई, लेकिन यासुकी चैन के लिए जो कभी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चैन ने ही तोतो चैन को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। कहानी लिखी है तत्सुको कुरिया नागी ने। हिंदी में अनुवाद पूर्वा यागी कुशवाहा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।